हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद चतुर्थ अध्याय श्लोक संख्या 24 एंड 25। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को समझने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओ नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टम् स्थापितं येन भूतले, स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा, पीताम्भरधारो बिम्बफलधरोष्ठा, पुरीन्द्रसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रा, कृष्णात्परं किमपि तत्त्व अहं न जाने। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुवन्ति ये स्तवे, वेदे साङ्गपत्क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा, ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो, यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा, देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं, भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। स्कंद 1 चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 24। कृपया अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी कहते हैं, एव वेदाधुर्मैधैर् धार्यन्ते पुरुषैर्यथा, एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः। त एव वेदाधुर्मैधैर् धार्यन्ते पुरुषैर्यथा, एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः। त एव वेदाधुर्मैधैर् धार्यन्ते पुरुषैर्यथा, एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः। त एव वेदाधुर्मैधैर् धार्यन्ते पुरुषैर्यथा, एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः। त एव वेदाधुर्मैधैर् धार्यन्ते पुरुषैर्यथा, एवं चकार भगवान् व्यासः कृपणवत्सलः। शब्दों का अर्थ, त एव वेदा दुर्मेधय, त मन वे, एव निश्चय ही, वेदा यानी ज्ञान के ग्रंथ, दुर्मेधय अल्पज्ञों द्वारा, धार्यन्ते धारण किए जाते हैं, पुरुषैर यानी मनुष्यों द्वारा, यथा जिस तरह, एवं चकार भगवान एवं इस प्रकार चकार संकलित किया भगवान अर्थात शक्तिशाली व्यास व्यास मुनि ने कृपणवत्सल यानी अज्ञानी जनता के प्रति दयालु। अनुवाद, इस प्रकार अज्ञान जन समूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास देव ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको धारण कर सके। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं, वेद एक है, यहाँ पर अनेक शाखाओं में इसके विभाजन के कारणों की व्याख्या की गई है। समस्त ज्ञान का बीज वेद ऐसा विषय नहीं है जिसे कोई सामान्य व्यक्ति आसानी से समझ सके। ऐसा प्रतिबंध है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है उसे वेद नहीं सीखना चाहिए। इस प्रतिबंध की त्रुटिवश अनेक प्रकार से व्याख्याएं की गई हैं। मनुष्यों का एक वर्ग ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के कारण ही ब्राह्मण योग्यता का दावा करता है। वह वेदों के अध्ययन को ब्राह्मणों का एकाधिपत्य मानता है। लोगों का दूसरा वर्ग इसे उन जाति वालों पर अन्याय बताता है जो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं ले पाते, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित हैं। वेदों का विषय ऐसा है जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की है, अतएव विलक्षण सत्वगुणी व्यक्ति ही इस विषय को समझ सकते हैं। रजोगुणी तथा तमोगुणी लोग वेद विषय को नहीं समझ सकते। वैदिक ज्ञान का चरम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण है। जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण में हैं, वे भगवान को बहुत कम समझ पाते हैं। सत्युग में प्रत्येक व्यक्ति सत्वगुणी होता था। धीरे धीरे त्रेता तथा द्वापर युगों में सत्वगुण का ह्रास होता गया और जनता भ्रष्ट होती गई। आधुनिक युग में सत्वगुण प्रायः शून्य है। अतएव जनता के हित के लिए परम दयालु शक्तिशाली ऋषि श्री वेदव्यास ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे वे रजो तथा तमोगुण वाले अल्पज्ञों द्वारा भी समझे जा सके। इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। अगला श्लोक पढ़िए, श्लोक नंबर 25।
त्रैना श्रुति गोचरा कर्मश्रय कर्मश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानां कृपया मुनिना कृतं। स्त्री शूद्र द्विज बन्धूनां त्रयेण श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानां कृपया मुनिना कृतं। स्त्री शूद्र द्विज बन्धूनां त्रयेण श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानां कृपया मुनिना कृतं। स्त्री शूद्र द्विज बन्धूनां त्रयेण श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानां कृपया मुनिना कृतं। शब्दों का अर्थ, स्त्री शूद्र द्विज बन्धूनां त्रयीणा श्रुति गोचरा। स्त्री अर्थात स्त्री वर्ग, शूद्र अर्थात श्रमिक वर्ग, द्विज बन्धूनां अर्थात द्विजों के मित्र का त्रयी यानी तीनों में न श्रुति गोचरा यानी श्रुति गोचर मतलब समझने के लिए नहीं है। क्या वो वेद नहीं समझ सकते, उनके पास इतना ज्ञान नहीं होता है कि वो वेदों की अलंकारमयी शब्दों को समझ सके। कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम, कर्म अर्थात कर्म में, श्रेयसी कल्याण में, मूढ़ाना मूर्खों का, श्रेय एवं भवेदिह, श्रेय मतलब परम लाभ, एवं इस प्रकार भवेत प्राप्त किया इह इससे, इति भारतम आख्यानम, इति इस प्रकार सोचकर, भारतम महाभारत आख्यानम ऐतिहासिक तथ्य, कृपया मुनिना कृतम, कृपया अर्थात महत अनुकंपावश, मुनिना मुनि द्वारा, कृतम अर्थात पूरा हुआ। अनुवाद, महर्षि ने अनुकंपावश यह हितकर समझा कि यह मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक हो, इस प्रकार उन्होंने स्त्रियों शूद्रों तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। द्विज बंधु वे हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं किंतु अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। ऐसे संस्कार बालक के जन्म के पहले से ही प्रारंभ हो जाते हैं और बीज आरोपण पहला गर्भधान संस्कार कहलाता है। जिस व्यक्ति का ऐसा गर्भधान संस्कार नहीं होता उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता। गर्भधान संस्कार के बाद अन्य कई संस्कार होते हैं जिनमें उपनयन संस्कार एक है। यह आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है और दूसरा आध्यात्मिक दीक्षा के समय। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है वह प्रामाणिक द्विज कहलाता है। यदि माता तथा पिता गर्भधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाते हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। ऐसे द्विज बंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है जो स्वभाव से ही अल्पज्ञ होते हैं। शूद्रों तथा स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति यथा स्त्रियां, शूद्र तथा उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं जिससे वे दिव्य वेदों के उद्देश्य को नहीं समझ पाते। ऐसे लोगों के लिए महाभारत लिखा गया। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति है। अतः इस महाभारत में वेद का सार श्रीमद् भगवद गीता सन्निविष्ट है। अल्पज्ञ लोग दर्शन की उपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। अतः वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवान श्री कृष्ण द्वारा श्रीमद् भगवद गीता के रूप में किया गया। व्यास देव तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर है। अतएव उन्होंने इस युग की पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। श्रीमद् भगवद गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। यह आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषद है। वेदांत दर्शन तो आध्यात्मिक स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। यह महान विज्ञान है और इसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान हैं। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वे ही दिव्य भक्ति में अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। मोकं कुरुतु वाचालं पंगु लंघयति गिरां यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं। सद्गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद चौथा अध्याय जिसका नाम है नारद का प्राकट्य। अभी क्योंकि वेद व्यास जी ने एक वेद में से चार वेद बनाए और विभिन्न प्रकार के इतिहास और पुराण लिखे हैं और इनके लिखने का कारण यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने क्यों किया है। तो श्लोक नंबर 24 में बताया कृपण वत्सल। कृपण वत्सल अर्थात जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानी जनता के ऊपर कृपा करके। क्योंकि शास्त्र अध्ययन करे बगैर कोई भी अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। एव वेदा दुर्मेदर। दुर्मेदर का मतलब होता है कि अल्पज्ञ जो है, जो इनके पास इतना ज्ञान नहीं है, तो फिर वो इतने वेदों को समझ नहीं पाएंगे। और वेदों के जो भाष्य है उनको धारण नहीं कर सकेंगे। एवं चकार भगवान, तो इस तरह, इसलिए भगवान मतलब शक्तिशाली, जिनके यहाँ पर वेद व्यास जी को भगवान कहकर कहा गया है कि उनके अंदर इतनी शक्ति थी, इतना ज्ञान था कि उन्होंने जब देखा कि अल्पज्ञ लोग वेदों की लैंग्वेज को नहीं समझ सकेंगे, तो उन्होंने उन अज्ञानियों पर कृपा करके उन्होंने वेदों को संकलन किया, यानी कि उनमें से फिर निचोड़ निकालकर दूसरे दूसरे शास्त्र बनाए, इतिहास बनाए, पुराण बनाए। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने बताया है कि दुर्मेधा, यानी जो कम अकल लोग हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने बताया है कि वास्तव में वेद को समझने के लिए ब्राह्मण की बुद्धि चाहिए, क्योंकि वेद जो है वो समस्त ज्ञान का भंडार है। वेद के अंदर जो भाष्य लिखे हुए हैं वो कोई सामान्य व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। यहाँ तक कि ये तो प्रतिबंध है, यानी कि एक नियम है कि जो सुपात्र ब्राह्मण नहीं है वो वेद उसको सीखना ही नहीं चाहिए। जब तक आप ब्राह्मण नहीं बनते हो तब तक आप वेद को सीखने के बारे में सोचो भी नहीं। और आप ये प्रतिबंध क्या है कि आपको वेद सीखने के लिए क्या बनना चाहिए? ब्राह्मण बनना चाहिए। अब ये तो बता दिया, लेकिन ब्राह्मण सब लोग अपने अपने, यानी त्रुटिवश इस बात की व्याख्या करते हैं, हर कोई अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ब्राह्मण समझता है कि इसको ब्राह्मण कहते हैं, है ना। श्रीला प्रभुपाद जी ने बोला, कोई लोग क्या सोचते हैं कि ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया समझो ब्राह्मण हो गए। तो भले आपके अंदर ब्राह्मण की योग्यताएं नहीं है, कुछ कुछ लोग होते हैं ब्राह्मण बोलते हैं हम ब्राह्मण कुल से हैं, बस ब्राह्मण के घर पे जन्म ले लिया तो समझो वो कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। तो और कुछ क्या कहते हैं कि ये लोग ने जन्म तो ले लिया है ब्राह्मण कुल में, लेकिन उनके अंदर कोई ब्राह्मण जैसी योग्यताएं नहीं है, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मण होने के नाते वेदों पर एकाधिपत्य मानते हैं कि बस वेदों पर हमारे अधिकार है। तो इस तरह से तो दूसरे जो वर्ग हैं, यानी कि जिनके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटीज हैं, लेकिन वो ब्राह्मण कुल में जन्म नहीं लिए हैं, तो उनके साथ तो अन्याय है ना। लेकिन यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर बात बताई है, लेकिन ये दोनों ही दिग्भ्रमित है। यानी कि वास्तव में ब्राह्मण का क्या मतलब है? वेदों का विषय ऐसा है कि जिसकी व्याख्या स्वयं भगवान ने ब्रह्मा के लिए की है, अतः विलक्षण सत्वगुणी यक्त, यानी शुद्ध सत्व जिसके अंदर आता है, जिसके अंदर शुद्ध सत्व, सत्वगुण रजोगुण तीनों गुणों से ऊपर जो आ जाता है वही इस विषय को समझ सकता है। अब शुद्ध सत्व में आने के लिए पहले सत्वगुण में आना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर बताए जो रजोगुणी और तमोगुणी लोग हैं वो तो वेद को समझ नहीं सकते हैं। और वेदों को समझने, अब शुद्ध सत्वों में आएगा तभी भगवान को समझेगा ना, क्योंकि भगवान तो तीनों गुणों से परे हैं। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने एक सुंदर बात बताई है कि वेदों को समझने का उद्देश्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण को समझना। जो लोग रजोगुण तथा तमोगुण में, वो भगवान को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। सत्युग में अब क्या था कि अब क्या वेदों को समझने के लिए क्वालिटी क्या चाहिए? ब्राह्मण होना। ब्राह्मण का मतलब क्या बता? कि आपको शुद्ध सत्व में होना। अब जैसे कलयुग आया है, हमने क्या पढ़ा, श्लोक नंबर 17 में हमने पढ़ा था कि जैसे जैसे कलयुग आता जा रहा है तो जीवों के अंदर बहुत सारी डिसक्वालिटीज आती जा रही है। क्या? अश्रद्धानानि सत्वान, यानी एक तो उनके अंदर श्रद्धा खत्म हो गई और सत्वगुण समाप्त हो गया। अब क्या था, पहले कलयुग में हर कोई जीव सत्वगुण में होता था, जैसे जैसे द्वापर युग आया फिर उसके अंदर सत्वगुण का और ह्रास हुआ, त्रेता युग में और ज्यादा ह्रास हुआ, और यहाँ पर जब हम आधुनिक युग यानी कलयुग में आए हैं तो निस्सत्वान, सत्वगुण प्राय नष्ट हो गया है। अतएव जनता के हित के लिए, अब क्योंकि सत्वगुण नहीं है तो समझो कि कोई वेद को समझ नहीं सकता, क्योंकि वेद को समझना क्या है, भगवान को समझना। भगवान को समझने के लिए शुद्ध सत्व में आना चाहिए, और आज का मनुष्य तो सत्वगुण, उसके अंदर सत्वगुण ही नहीं है, तो शुद्ध सत्व की क्या बात करनी। तो फिर ऐसे जीवों के कल्याण के लिए अत्यंत सुंदर शब्द है व्यासः कृपण वत्सलः, यानी जो अज्ञानी जीव है उनके ऊपर इतनी करुणा की कि ये बेचारे एक तो वैसे ही उनकी कलयुग के कारण आयु क्षीण हो गई है, उनकी बुद्धि समाप्त हो गई है, सत्वगुण भी नष्ट हो गया है, और इनके पास कोई माध्यम नहीं है ना, ये कैसे भगवान को जानेंगे, कैसे अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त करेंगे। तो उन अज्ञानी अल्पज्ञों जीवों के ऊपर कृपा करके वेदव्यास जी ने वेदों को अनेक प्रकार से विभक्त कर दिया, जिससे रजोगुण और तमोगुण वाले जीव जो कि अल्पज्ञ हैं, वो भी वेदों के अंतरिंग कारण को समझ सके। और उसकी व्याख्या श्री प्रभुपाद जी बोलते अगले श्लोक में की गई। अगले श्लोक में क्या कहा, स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम त्रयीण श्रुति गोचर, के वास्तव में आप इस हमारे इस आधुनिक युग में, तो क्योंकि हम अभी आगे आएंगे तो फिर वेद तो है ही नहीं ना, वेद के 94% तो समाप्त हो गए, लुप्त तो हो गए हैं। अभी हमारे पास 6% वेद है, उसको भी समझने के लिए ना कोई आगे आ रहा है, मतलब कोई समझ ही नहीं सकता, सिर्फ उसको पढ़ने के लिए भी 10,000 से ज्यादा आयु चाहिए। लेकिन पहले पहले जमाने में क्या होता था कि जो ब्राह्मण क्वालिटीज के लोग होते थे और वो जब गुरु से दीक्षा लेते थे और वहां पर गुरुकुल में जाकर शिक्षा लेते थे वेदों की, उनमें भी इनको मना किया जाता था, स्त्री शूद्र और द्विज बंधु। द्विज बंधु क्या होते हैं, यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने बताया है कि क्षत्रियों ब्राह्मणों और वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों के जन, उनके अंदर जन्म तो लेते हैं लेकिन अपने पूर्वजों के तुल्य नहीं होते, यानी कि वो क्या करते हैं, उनका जन्म तो हो गया उन कुलों में, ठीक है, वो ब्राह्मणों में पैदा हो जाते हैं या क्षत्रियों में या वैश्यों में, लेकिन उनके अंदर वो क्वालिटीज वो विकसित नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उनके जो संस्कार है उनका अभाव होता है। वास्तव में मनुष्य जीवन पशु पक्षियों की तरह रहने के लिए नहीं है। शास्त्रों में मनुष्य जीवन के हर एक स्टेप के विषय में बताया गया है कि कौन कौन से संस्कार करने होते हैं। तो वो संस्कार जो है वो श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हैं कि बालक के जन्म लेने से पहले ही प्रारंभ हो जाते हैं, यानी पहला जो संस्कार होता है वो गर्भधान संस्कार, बीज आरोपण पहला संस्कार कहलाता है, और जिसका ऐसा संस्कार नहीं होता उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता, यानी कि फिर उसे ना द्विज नहीं माना जाता। द्विज का क्या मतलब होता है, देखो मनुष्य के दो जन्म होते हैं, एक तो उस समय जन्म होता है जिस समय माता के गर्भ से जन्म होता है, और दूसरा किस समय जन्म होता है, जब गुरु से दीक्षा ली जाती है तब दूसरा जन्म होता है, क्योंकि गुरु महाराज हमारा नाम भी चेंज करते हैं, हम बोलते हैं ना इस दिन मेरा दूसरा जन्म हुआ। लेकिन यदि गर्भधान संस्कार ही नहीं होता, अब यह जो संस्कार है ना हमारे, वो अलग अलग शास्त्रों में लिखे हुए होते हैं उसमें गर्भ, लेकिन श्री प्रभुपाद ने तो कह दिया कि अगर आप कृष्ण भावना भावित हो जाते हो और ना संतान उत्पत्ति से पहले दीक्षा आप गुरु महाराज से लेते हो और 50 माला एटलीस्ट पति और पत्नी मिलकर 50 माला करने के बाद आप यदि गर्भधान संस्कार करते हो, तो ये पहले तो उसमें तो क्योंकि शास्त्र में तो अनेक विद्याएं लिखी हुई हैं, लेकिन श्रील प्रभुपाद ने उसको बहुत सरल कर दिया है कि पति और पत्नी बालक के जन्म से पहले 50-50 जब राउंड कम्प्लीट करेंगे और इस तरह से गर्भधान संस्कार उनका होता है, यानी कि हम जो कार्य कर रहे हैं कृष्ण भावना भावित कार्य का मतलब क्या होता है कि आप वो कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पर बताया कि यदि पति पत्नी जो है माता पिता गर्भधान संस्कार का पालन नहीं करते हैं, केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं, तो ये संतानें द्विज नहीं बन सकती, ये इनके अंदर इतनी बुद्धि नहीं होगी कि वो शास्त्रों को सही तरह से समझ सके। तो उनको द्विज बंधु कहा जाता है क्योंकि उनको अधिकार नहीं होता है अभी शूद्र को, क्योंकि शूद्र के अंदर बुद्धि नहीं होती। यहाँ पर स्त्रियों को लिखा गया क्योंकि स्त्रियों को ना हमेशा गुरुकुल में भी नहीं भेजा जाता, और ये एक ऐसी योनि है, वास्तव में पुरुष की माता है, पुरुष की जननी है, लेकिन इतनी अल्पज्ञ होती है, यानी उनकी बुद्धि इतनी इनोसेंट होती है कि वे वेदों की इन अलंकारमयी शब्दों को नहीं समझ पाती और वेदों के लक्ष्य को नहीं समझ पाती, बल्कि क्या होता है कि वो है ना, जैसे वेदों के अंदर क्या होता है, लिखा होता है कि ये करने से ये प्राप्त होगा, ये करने से ये प्राप्त होगा, ये करने से ये प्राप्त होगा, तो वास्तविक लक्ष्य को ना समझकर ये जो भौतिक शरीर से रिलेटेड जो बातें ना उनकी ओर और ज्यादा आकर्षित हो जाती है। इसलिए शास्त्र जो है वो स्त्रियों को और शूद्रों को और द्विज बंधुओं को वेद अध्ययन करने का अधिकार नहीं देता, क्योंकि वेदों का वास्तविक जो लक्ष्य है वो इन अलंकारमयी बातों में उलझना नहीं है, बल्कि क्या है, भगवान को प्राप्त करना। वेदों का उद्देश्य क्या है, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं अल्पज्ञ लोग जो होते हैं वो दर्शन की उपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि रखते हैं। यानी कि दर्शन का क्या मतलब होता है, सिद्धांत। जैसे श्रीमद् भगवत गीता में सिद्धांत है क्या कि कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब जो कुछ भी है वो कृष्ण के अंडर में रहकर कार्य करता है, दैवी जो ये प्रकृति है वो भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। लेकिन अगर डायरेक्ट से ये सिद्धांत दिया जाता है ना अल्पज्ञ लोगों को, तो सिद्धांत समझ में नहीं आता। फिर उन्होंने क्या किया कि ये बताया, इति भारतम आख्यानाम कृपया मुनि नागृता। उन्होंने क्या किया, सिद्धांत दिया श्रीमद् भगवद गीता जो कि समस्त वेदों का सार है, वो सिद्धांत के रूप में दिया, लेकिन किसके अंदर डाल के, महाभारत के अंदर में डाल के, ताकि जो अल्पज्ञ वर्ग हैं जो उसके अंदर कथाओं के अंदर ज्यादा रुचि रखते हैं तो उनको कथा भी मिलेगी साथ में सिद्धांत भी मिलेगा। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बहुत ही सुंदर बात रखी है कि वेद व्यास तथा भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, दोनों ही भक्तों के कल्याण के लिए आए हैं और उन दोनों ने पतित आत्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता दी और वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना करके भगवद गीता को उसके अंदर डाल के दे दिया कि हाँ, जो मतलब इतने ज्यादा बुद्धिमान लोग नहीं है, अल्पज्ञ हैं, जो कथाओं में ज्यादा रुचि रखते हैं उन्हें भी दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी श्रीमद् महाभारत पढ़ने के बाद। और श्रीमद् भगवत गीता समस्त वेद ज्ञान का सार है, अगर जो कोई भगवत गीता को समझ लेता तो समझो सारे वेदों का अध्ययन उसने कर लिया और वेदों का सार समझ लिया। यह आध्यात्मिक मूल का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषद है, क्योंकि अलग से वेद तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं आध्यात्म स्नातकों के अध्ययन करने का विषय है, जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक में बहुत ज्यादा उन्नति कर लेते हैं ना, समझे स्कॉलर्स, उनके ही विषय है, वही वेदों को समझ सकते हैं या उस वेदों के आध्यात्मिक अंतरंग भगवत भक्ति में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये महान विज्ञान है और इसके आचार्य, अब क्या किया, चैतन्य महाप्रभु ने कोई भेदभाव नहीं रखा। पहले ये भेदभाव रखा गया था कि स्त्री नहीं पढ़ सकती, शूद्र नहीं पढ़ सकते, द्विज बंधु इनको है ना श्रुति के अंदर या वेद के अंदर कोई अधिकार नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने समस्त जीवों के कल्याण की बात करने के लिए किसी की कोई भी भेदभाव नहीं रखा, सबको कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कि वास्तव में वेदों का लक्ष्य क्या है, भगवान से प्रेम करना, और यही भगवान से प्रेम करना केवल भगवान के पवित्र नाम का रटन करके आप कर सकते हो। आप स्त्री हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो या कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ तक कि यदि आप जानवर भी हो तो भी यदि भगवान के पवित्र नाम का श्रवण करते हो, या जैसे चैतन्य महाप्रभु ने नाम केवल कहा नहीं बल्कि झारखंड के जंगलों से जब जा रहे थे तो जानवरों को भी भगवान के प्रेम में नचा दिया, तो ये चैतन्य महाप्रभु की असीम अनुकंपा है। हम ये जो इस युग में, इस कलयुग में हम रह रहे हैं, ये कलयुग स्वर्ण युग है, क्योंकि महाप्रभु ने प्रत्येक आत्मा को ये अधिकार दिया है कि वो अपने जीवन का वास्तविक लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा शक्ति प्रदत्त है, यानी जो चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हैं, उन्हें जब चैतन्य महाप्रभु शक्ति प्रदान करते हैं तो वो दिव्य भक्ति के अन्यों को दीक्षित कर सकते हैं। फिर वो शास्त्र जो है ना, शास्त्र का वास्तविक सार है कृष्ण को प्राप्त करना, कृष्ण की भक्ति करना, कृष्ण से प्रेम करना। तो यही चैतन्य महाप्रभु के आदेशानुसार उनके आदेशों को पालन करके जो इस वास्तविक सार को समझ सकता है तो वो तो सबको दीक्षा दे सकता है, सबको भक्त बना सकता है, सबको भगवान के पास पहुंचाने की का पावर हासिल कर सकता है, यदि वो चैतन्य, यदि किसी को चैतन्य महाप्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो सके। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलई वनास्तय 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 गतिरन्यथा। हरि का नाम, केवल हरि का नाम, केवल हरि का नाम ही एकमात्र साधन है इस कलयुग में भगवत प्राप्ति करने का, और कोई साधन नहीं है, नहीं है, नहीं है, कदापि नहीं। तो यदि वेदों का सार है भगवान के पवित्र, भगवान को प्राप्त करना, और वेदों का सार निकाल के भगवान के पवित्र नाम में रख के दे दिया चैतन्य महाप्रभु ने कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम को पढ़ना है और भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इससे समस्त वेदों का लक्ष्य जो है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।